आरवी अपनी बात कहकर चुप हुई तो शान ने उसे नज़रअंदाज करते हुए सहजता से कहा, मेरे स्टडी रूम में एक डोर है, उसके दूसरे तरफ लाइब्रेरी बनी है, बहुत सी बुक्स हैं वहाँ। बड़ी माँ से कहना वो तुम्हें वहाँ ले जाएंगी, जो बुक पसंद हो ले सकती हो, बस पढ़कर वापस उसे उसकी जगह पर रख देना, इससे तुम्हारा टाइम पास हो जाया करेगा। अगर तुम्हें कोई और बुक चाहिए हो तो बता देना, वो भी आ जाएगी। आई होप इसके बाद तुम बोर तो नहीं हुआ करोगी। इतना कहकर उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया तो आरवी ने फिर से पीछे से कहा, वो तो ठीक है पर मुझे काम करना है। क्यों? शान एकदम से पलट गया और ये कहते हुए उसको घूरने लगा। उसके घूरने से आरवी कुछ घबरा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्यों का क्या मतलब, बस करना है काम, पहले भी करती थी। तो पहले तुम मेरी वाइफ नहीं थी, अब तुम मिसेज आरवी शांतनु मल्होत्रा हो, इतना तो याद होगा ही तुम्हें, शान ने थोड़े गुस्से से कहा, जिसे सुनकर आरवी हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि शान ने उसको वाइफ तो पहले भी कहा था, पर इतने हक से उसके नाम के पीछे अपना नाम आज तक नहीं जोड़ा था। उसके रिएक्शन को देखकर शान को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या कहा है, तो उसने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब था कि चाहे नाम के ही सही, पर अब तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, भले ही अभी कोई नहीं जानता, पर इससे ये सच तो नहीं बदल जाता कि हम हस्बैंड वाइफ है। मेरी कोई रेपुटेशन है, कैसा लगेगा कि हस्बैंड लाखों लोगों को काम देता है और उसकी वाइफ एक मामूली सी डांस क्लास में डांस सिखाने की नौकरी करती है। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तुम्हारी वजह से अगर मेरे नाम पर एक उंगली भी उठी तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तुम कहीं बाहर काम करने नहीं जाओगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं नहीं मानती आपके किसी फैसले को, ये ज़िंदगी मेरी है तो इसके फैसले लेने का हक भी सिर्फ मुझे है। मैं नौकरी करूंगी मतलब करूंगी, आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। मैं इस घर में रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गुलाम हूँ और जो आप चाहें मैं वही करूँ। मेरा जो मन होगा मैं करूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकते, इसका कोई हक नहीं आपको, सुना आपने, मैं काम करूंगी मतलब करूंगी। अब आरवी भी गुस्से में चिल्लाई। उसकी बात सुनकर शान की भौहें तन गई, उसने गुस्से में आरवी की बाँह को पकड़ी और दांत पीसते हुए कहा, तुम कहीं बाहर काम करने नहीं जाओगी, सुना तुमने, सही कहा तुमने कि गुलाम नहीं तुम मेरी, पर रहती तो इसी घर में हो ना, इस घर में मेरा हुकूमत चलती है, यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ, यहाँ रहने वाले किसी भी इंसान को मेरे फैसले के खिलाफ जाने का हक नहीं है, तुम्हें भी नहीं, तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुमने मेरे खिलाफ जाकर कुछ करने की कोशिश की या मेरी मर्जी के बिना इस घर से बाहर कदम भी निकाला तो दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रख पाओगी। उसने आरवी की बांह को कस के पकड़ा हुआ था, जिससे आरवी को दर्द होने लगा था। वो लगातार उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिससे चिढ़कर शान ने उसकी बांह पर अपनी पकड़ कसके हुए आखिरी बात कही, जिसे सुनकर आरवी की आंसुओं से भरी निगाहें उसके तरफ उठ गई थी। वो हैरानी से उसे देखने लगी थी। उसकी आंखों में भरे आंसुओं को देखकर जाने क्यों पर शान की पकड़ उसकी बांह पर ढीली हो गई। उसने उसे छोड़ दिया और कदम पीछे लेते हुए बोला, सही सुना है तुमने, अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस घर की दहलीज पार की तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आगे जो तुम्हारा मन करे करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर याद रखना मेरा फैसला बदलने नहीं वाला है। नौकरी करनी है तो शौक से करो, पर उसके बाद अपने लिए नया ठिकाना भी ढूंढ लेना। शान नहीं चाहता था कि आरवी किसी मामूली सी नौकरी के लिए परेशान हो, और उसको रोकने के लिए उसने बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो वो खुद भी कहना नहीं चाहता था। उसकी बातें सुनकर आरवी की आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर उसके गालों को भिगाने लगीं। शान चुप हुआ और उससे नजरें फेर ली। उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया तभी उसके कानों में आरवी की धीमी सी दर्द भरी आवाज़ पड़ी, तो आप मुझे इस घर से निकलने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ रहना है तो आराम से रहो, अगर किसी चीज़ की कमी है तो बताओ, जो तुम्हें चाहिए होगा सब मिलेगा, बस तुम बाहर जाकर कोई मामूली सी जॉब नहीं करोगी, सब कुछ मिलेगा, बस आराम से यहाँ रहो, जो करती हो करो, कोई रोक टोक नहीं तुम पर, बस जॉब करने की बात अपने दिमाग से निकाल दो। शान ने अब उसकी तरफ पलटते हुए आराम से कहा। उसकी बात सुनकर आरवी ने भारी गले से कहा, तो आप मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हैं? नहीं, बस मैं तुम्हें एक मामूली सी जॉब के लिए परेशान होते नहीं देख सकता। शान के मुख से अनायास ही बेख्याली में ये निकल गया। प्यार तो था, परवाह भी थी, पर अभी तक एहसास नहीं हुआ था और ना ही यूं वो परवाह जाहिर करता था। रिश्ता निभाने लगा था पर अभी तक अपने ही दिल के एहसासों से अनजान था। आरवी ने आश्चर्य से उसे देखा तो शान ने चुट से बात बदलते हुए कहा, तुम यहाँ अंशु के वजह से हो, अगर तुम जॉब करोगी तो अंशु पर पूरा ध्यान नहीं दे पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें किसी जॉब के करने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम्हारी प्रायोरिटी बस अंशु की अच्छे से परवरिश करना है, तुम्हें अपना पूरा ध्यान अंशु, हमारे परिवार और हमारे रिश्ते पर लगाना चाहिए। आरवी ने अपने आंसू साफ करते हुए झट से कहा, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अंशु पर पूरा ध्यान दूंगी। जितनी देर वो स्कूल में होती है उतनी देर के लिए ही डांस क्लास जाऊंगी। चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ मेरी पहली प्रायोरिटी अंशु और ये घर है। मैं अपने किसी फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी और ना ही आपको या किसी और को शिकायत का कोई मौका दूंगी। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो उसका तो जॉब से कोई लेना देना है ही नहीं। आप सुबह जाते हैं और देर रात को आते हैं, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगी। इस वक्त आरवी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसकी बात सुनकर एक पल को शान खामोशी से उसे देखता रह गया। फिर उसने नजरें फेरते हुए कहा, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम मेरी वाइफ हो और मैं नहीं चाहता कि तुम चंद पैसों के लिए बाहर जाकर काम करो, तो दोबारा इस बारे में मुझसे बात करने की सोचना भी मत, और अगर मेरे फैसले के खिलाफ गई तो अंजाम के लिए भी तैयार रहना। शान ने सख्ती से कहा और जाने के लिए फिर से मुड़ गया। अब आरवी की सारी उम्मीदें टूटने लगी थी। उसने परेशान होकर कहा, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं, मेरा काम करना बहुत जरूरी है। उसकी बात सुनकर एक बार फिर शान के बढ़ते कदम रुक गए। उसने उसकी तरफ मुड़ते हुए फिर से सवार किया, क्यों, क्या जरूरत है तुम्हें जॉब करने की, जब तुम्हें सब मिल ही रहा है, अगर कुछ और चाहिए तो कहो, वो भी मिल जाएगा। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, आपको नहीं होगी जरूरत पर मुझे है। आप अमीर है पर मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ जिस पर उसके परिवार की जिम्मेदारी है। माँ की तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती, मैं थी तो उनकी काम में मदद कर देती थी, कुछ पैसे कमा लिया करती थी, पर अब वो अकेली पड़ गई हैं। ऊपर से मेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया था जिसका बोझ भी उनके सर पर चढ़ गया है, वो भी मेरे वजह से। उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, जब लौटाने का वक्त आया तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरी शादी धूमधाम से करने के लिए उन्होंने घर भी गिरवी रख दिया, कर्ज भी ले लिया, और जब मुझे उनका सहारा बनना चाहिए था तब मैंने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। वो कैसे सब संभाल रही हैं मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे उनका सहारा बनना है, काम करके उनके ऊपर से सब कर्ज उतारना है, उन्हें एक आराम की जिंदगी देनी है, और मैं हूँ कि उन्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर यहाँ ऐश कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर सकती।
आज तक मेरी माँ ने मेरे लिए वो सब किया जो एक बाप करता है। पापा के जाने के बाद उन्होंने सब अकेले संभाला, खुद कितनी मेहनत करती थी ताकि मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। मुझे अच्छा भविष्य देने के उन्होंने अपना वर्तमान बिगाड़ लिया, दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया। अब मेरी बारी है और इसमें मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपने पैसों से अपनी माँ को एक आराम की जिंदगी देना चाहती हूँ। क्या आपकी नज़रों में मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी माँ के लिए अपना फ़र्ज़ निभा सकूँ? आरवी ने आंसुओं से भीगी आंखों से उसे देखा। शान कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा गया, फिर उसने आराम से कहा, ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहती तो ठीक है, तुम काम करना चाहती हो तो आज से तुम डैड के केयरटेकर का काम करना शुरू कर दो। उसके लिए तुम्हें हर महीने पैसे मिल जाया करेंगे जिससे तुम अपनी मम्मी की मदद कर सकती हो। आप समझ नहीं रहे, मुझे आपकी मदद से पैसे नहीं कमाने, और डैड की देखभाल के लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो तो मैं वैसे भी करती ही हूँ, और उन्हें केयरटेकर की ज़रूरत है भी नहीं, उनका जो काम होगा मैं ऐसे ही कर दूंगी। मैंने उन्हें डैड सिर्फ कहा नहीं है बल्कि दिल से उन्हें डैड माना है। भले ही आपने इस रिश्ते को नकार दिया था पर मैंने पहले दिन से इस दिल को दिल से अपनाया है। मैं उन्हें डैड मानती हूँ, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है, उसके लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने बलबूते पर कुछ करना है। इतनी सी बात आप क्यों नहीं समझ रहे? आरवी अब बहुत परेशान हो चुकी थी और उसे समझाते समझाते हार चुकी थी। वो चुप हुई तो शान ने रौबदार आवाज़ में कहा, सही कहा तुमने, मुझे ना तुम्हारी इस बकवास में कोई दिलचस्पी है और ना ही मुझे कुछ समझने की ज़रूरत है। वजह चाहे जो भी हो पर मेरा फ़ैसला वही है, अगर तुम जॉब करती हो तो तुम्हें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। इतना कहकर वो तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गया। बेचारी आरवी आंखों में आंसू लिए उसे देखती ही रह गई और शान उसकी आंखों के सामने से ओझन हो गया। शान और आरवी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं लेकिन उनकी सोच और प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। शान का रवैया कठोर और नियंत्रणकारी है जबकि आरवी अपनी स्वतंत्रता और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को निभाना चाहती है। क्या वे कभी कोई समझौता कर पाएंगे? टू बी कंटिन्यूड।